देवियों सज्जनों, हम पिछले 3-4 सप्ताहों से, बीच में दूसरा कार्यक्रम था, सुपरस्टिशियंस या अंधविश्वास पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे संसार में अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से सुपरस्टिशियन दिखता है। पढ़े लिखे लोग हो, अनपढ़ हो, कोई गरीब हो, धनी हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, अफ्रीकन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, सब सोसाइटी में कम बहुत, नोइंगली अननोइंगली, हम बहुत सारे सुपरस्टिशियन को फॉलो करते हैं। इवन आप पॉलिटिकल लीडर्स को देखेंगे, एक्टर्स एक्ट्रेस को देखेंगे, स्पोर्ट्स मैन को देखेंगे, उनकी लाइफ में भी बहुत सारे सुपरस्टिशियंस होता है। हमने इसकी भी चर्चा की, सुपरस्टिशन पैदा कैसे होता है मन के, लोगों के मन में बहुत सारे उसके सोर्सेस होते हैं, इग्नोरेंस, फियर ऑफ द अननोन, लैक ऑफ रैशनल बिलीव, साइंटिफिक एटीट्यूड। रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस, वी आर टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक एटीट्यूड, बिकॉज मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट आर ऑल्सो एज इक्वल सुपरस्टिशियस एज ए इलिटरेट पर्सन। सो इट्स अबाउट साइंटिफिक एटीट्यूड, जो एक इलिटरेट पर्सन में भी हो सकता है पर ए साइंटिस्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट प्रोफेशनली ही इज यूजिंग साइंस, नॉट इन लाइफ। तो लैक ऑफ फैकल्टी टू इंटरप्रेट सर्टन इवेंट्स, ए फॉल्स कंसेप्शन ऑफ कॉजेशन, इनकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं। तो जनरली ये कौन सा आदमी ज्यादा सुपरस्टिशियस होता है और उसका सोर्स क्या है? सोर्स है जब रिपीटेड को इंसिडेंसेस लाइफ में होते हैं, कोई इच्छा बहुत जबरदस्त होती है वो फुलफिल नहीं हो पाता है तो फिर हम सुपरस्टिशियन की ओर अट्रैक्ट होते हैं। हमारी ट्रेडिशंस, इवन फैमिली लर्निंग आल्सो मोटिवेट अस, इंस्पायर अस टू फॉलो ऑल दिस सुपरस्टिशियस थिंग्स। इवन आवर कल्चर्स, इन द नेम ऑफ कल्चर रिलीजन, वी आर टॉट टू फॉलो ऑल दिस सुपरस्टिशियस थिंग्स। समटाइम इमेजिनेटिव स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, मिथ्स एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं सुपरस्टिशियस बनने के लिए। और बड़े इंटरेस्टिंग थिंग इज, इवन स्कॉलर्स ऑल्सो मैनिपुलेट आवर माइंड टू बी सुपरस्टिशियस। अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। हमने अपने इंडियन लोगों के कंटेक्स्ट में समझने की भी कोशिश की कि हमारे यहां एवरग्रीन सुपरस्टिशियंस क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा भी हम काफी कर चुके हैं। पिछली बार जहां हम थे वो था कि पेरिडोलिया, अंग्रेजी में ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। जब आप बादलों में कोई पिक्चर देखते हैं, क्लाउड्स होते हैं, कभी कभी आसमान में आप देखते हैं उसमें एक फॉर्म बन जाता है, घोड़ा जैसा दिखता है, हाथी जैसा दिखता है, पर हो सकता है आपको वो गणेश जैसा दिखे, जीसस जैसा दिखे, मोहम्मद जैसा दिखे। इट्स योर ओन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई रोटी बनाते बनाते जल गया, उसमें एक आकार दिख गया शुंड जैसा, गणेश जी आविर्भाव हो गए, है ना? कभी कभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया में पपया काटा, अमरूद काटा, तो उसमें कोई पिक्चर सा दिखा, जीसस आ गए, हनुमान पैदा हो गए। ये एक तरह की, अब आलू का आकार थोड़ा बदल गया, आपको एक खास तरीके की चीज दिखने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल फेनोमेना है, इसमें कोई ईश्वर आता नहीं है, ईश्वर का कोई काम धंधा नहीं है कि आपके ब्रेड के द्वारा आपको दिखाई देगा। अब अच्छा काम करो, मेडिटेशन करो, अपने चरित्र को शुद्ध रखो, आप इसको रियलाइज करोगे। वो कोई एंटरटेन, उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, आपके अमरूद के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह एक बड़ा यूनिवर्सियल सुपरस्टिशियन है भूत और प्रेत, हमारे लोगों में भी बहुत पॉपुलर है और सारी दुनिया में पॉपुलर है। ये भूत प्रेत आपको कहां दिखते हैं? दे आर ऑफन फाउंड इन डिसोलेट स्ट्रेचेस ऑफ रोड और फील्ड अराउंड द विलेज, अनयूज्ड हाउसेस, वेल्स और प्लेसेस, क्रेमिटोरियम और ग्रेवयार्ड्स। आज हिंदू आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो भूत प्रेत का कंसेप्ट है, ये इंडियन लोगों के लिए भी, खास करके जो हिंदू लोग हैं उनके लिए ये बड़ा ही, ये एक इंपोर्टेड थ्योरी है, फॉरेन थ्योरी जो हमने अडॉप्ट किया है, क्योंकि हमारे किसी भी शास्त्र में, हमारे शास्त्रों में भी बहुत सारे पुराण हैं ऐसे हैं जिसमें भी बड़े उजुल फुजुल बातें हैं जिनको लोग शास्त्र मान बैठते हैं, इवन वो वर्स्ट टाइप ऑफ स्क्रिप्चर में भी हिंदुइज्म में भूत प्रेत का कोई कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। इवन द वर्ड भूत इन संस्कृत इज मीन्स दोज हु आर क्रिएटेड, हु आर बर्न, जो पैदा हो चुके हैं उसे भूत है। आप गीता पढ़ते हैं, सबसे आसान बुक है, उपनिषद पढ़ेंगे, देखिए उसमें भूतों का यूज होता है, किसके लिए? प्राणी मात्र के लिए, जो कुछ पैदा हो गया सब भूत है, आप और हम सब भूत हैं, और जो मर जाए उसे प्रेत कहते हैं। प्र अच्छी तरह, ई धातु संस्कृत में जिसका मतलब होता है जाना, ये पर्सन और ये थिंग और बींग व्हिच इज गन, जो चला गया दोबारा नहीं आएगा, मरा हुआ व्यक्ति प्रेत है। इसीलिए जो अंत्येष्टि क्रिया है उसका दूसरा नाम होता है प्रेत कर्म, जो लास्ट राइट्स होता है। और बड़े मजेदार चीज आप देखिए, देखिएगा कोई भूत प्रेत की कहानी आप पढ़िए, घोस्ट या स्पिरिट की, कोई मूवी देखिए, हॉलीवुड देखे, बॉलीवुड देखे, टॉलीवुड देखे, कहीं का भी देखिए, उसके बैकग्राउंड देखेंगे आपको समझ में आएगा, या तो वह किसी ग्रेवयार्ड के आसपास होगा वो भूत प्रेत, कोई खंडहर, पुराना चर्च, कभी आपको किसी मंदिर के आसपास या हिंदू श्मशान के आसपास भूत प्रेत का पिक्चर नहीं दिखेगा जी। उसका कारण है, हिंदुओं में ये कंसेप्ट ही नहीं था, ये तो हम एजुकेटेड होते गए और अंग्रेजों को आत्मसात करते गए, सारी बुराइयां आत्मसात करते गए, ये एक अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारे फिलॉसफी में ये भाव है कि व्यक्ति जो मरता है वो कर्म के अनुसार आत्मा, उसको अपना फल मिलता है, वो अगले नया जन्म प्राप्त करता है। वो किस तरह का शरीर उसको मिलेगा, मनुष्य बनेगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे, वो अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित है। शरीर यहां से छूटा, अगला शरीर उसने धारण किया, इसलिए उसको कोई बिना शरीर की भटकने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। और जो शुद्ध आत्मा वाले हैं उनको मुक्ति मिल जाती है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त करते हैं। ये कंसेप्ट आया कहां? बड़ा यूनिवर्सियल है ये। इब्राहिमिक रिलीजियनों में, जिसमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ज्यूस है और उनसे जितने भी निकले हुए दूसरे रिलीजन है, उनके वहां इसकी जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन ये है कि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, तो उनकी थ्योरी है कि देयर विल बी ए डे ऑफ जजमेंट, जिसको कयामत के दिन कहते हैं, और उस दिन परमात्मा लिखा जोखा करता है, हिसाब किताब करता है, अकाउंटिंग करता है, किसको कहां भेजना है, स्वर्ग भेजना है, नरक भेजना है। देन ही हैज टू आस्क द प्रोफेट यू बिलीव इन, अगर आप क्रिश्चियन हैं, जीसस को मानते हैं, तो जीसस इंडिकेट करेगा उसे स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानता जीसस को सब नरक जाएंगे। अगर आप इस्लामिक मानते हैं तो आप सब स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो सब आप नरक जाएंगे। कैसे जाएंगे? सशरीर जाएंगे, विथ बॉडी। तब तक आप क्या करेंगे? मैं तो आज मर गया, कयामत आएगा जी, जजमेंट डे ऑफ जजमेंट आएगा 10,000 साल के बाद, 50,000 साल के बाद, तो क्या करूंगा? आई हैव टू वेट। इसलिए उनको जलाते नहीं है, बॉडी को नष्ट नहीं करते, इनको जमीन में गाड़ देते हैं, ग्रेवयार्ड में। बेचारी आत्मा क्या करेगी? भटकती रहती है, घूमती रहती है। आपके पास नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, शादीशुदा नहीं हो, अकेले पड़े हो, क्या करोगे? बाजार में घूमते रहोगे। खाली आत्मा क्या करेगी? वेट करेगी ना कयामत तक के लिए। फिर अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। अच्छी आत्माएं होंगी तो आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाएंगी, बुरी आत्मा आपको तंग करेगी। बात समझ में आई? ये उनके फिलॉसफी है। अब कितना सच है झूठ है, आपको ज्यादा मजा आता है तो अच्छी बात है, अब एक्सेप्ट करो। पर ये एक नॉन हिंदू कंसेप्ट है। पर हमारे घर घर में भी भूत प्रेत घुस चुके हैं। बड़ी मजेदार बात देवियों सज्जनों, भूत प्रेत सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जो इसको मानते हैं, जो नहीं मानता इसको नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब अगर आप साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करते हो देयर इज समथिंग यू हैव टू सी इट, ये कहीं भूत प्रेत नहीं कुछ भी, अगर आप साइकोलॉजिकली ये मानते हो कि मैं राजा हूं, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यकीन मानिए आपको सपने में भी दिन में भी सब जगह आपको फील होगा यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो स्केप्टिक होते हैं, जो संदेह करते हैं, उनको कभी भूत प्रेत नहीं दिखाई देता है। जैसे ही भूत प्रेत की बात कभी मंडली में करो, दो चार खड़े हो जाएंगे, जी ये झूठ है, आपको पता नहीं है, हमारे दोस्त हैं, उसने देखा, हमने देखा, देखा कोई डाउट नहीं है। पर वो उन्हीं को दिखेगा जो मानते हैं, मानना छोड़ दीजिए आपको कभी नहीं दिखेगा। इसी से रिलेटेड और एक है ब्लैक मैजिक, जनरली इन्वॉल्व्स सम टैंट्रिक तांत्रिक रिचुअल्स। दीज रिचुअल्स आर यूज्ड टू रिमूव द स्पेल ऑफ इंडिविजुअल्स हु थिंक दैट दे आर बीइंग पोजेस्ड बाय घोस्ट एंड स्पिरिट। भूत चढ़ गया है, डायन आ गई है, चुड़ैल घुस गई है, वगैरह वगैरह। हमने इस पर भी काफी चर्चाएं की है, हुइच की, कैसे दुनिया भर में महिलाओं को डायन के नाम पर जुल्म होता रहा है। 18th century में सिर्फ 100 साल के अंदर यूरोप में करोड़ों करोड़ों महिलाओं को मारे गए, टर्चर किया गया इन द नेम ऑफ हुइच। और आज भी रूरल इंडिया में बहुत सारे जगह बहुत सारे महिलाओं के जीवन नरक बना हुआ है उनको डायन घोषित करके। ये जो सो कॉल्ड पोजेशन ऑफ घोस्ट है, जो भूत अंदर आता है, प्रेत आता है, फिर वो कुछ नुकसान करता है, फिर हम ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूंक करने वाले के पास, वो कुछ तंत्र मंत्र करता है, खोपड़ी रखता है, वो टॉय लेता है, उसके अंदर कुछ वो करता है, तो आपके दुश्मन को परेशानी होगी। बेसिकली ये जादू टोना दुश्मनों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए यूज होता है, करोड़ों लोग मानते हैं जी। अब भारत में ये बहुत पॉपुलर है। अभी 5-7-8 साल पहले एक न्यूज आई थी, रोहतक में एक डॉक्टर कपल, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, जगह से कोई मतलब नहीं, वो तो किसी भी शहर में होता है, न्यूज पता चला इसीलिए बोलते हैं। उसका बड़ा बेटा बहुत टैलेंटेड है, स्कूल में अच्छा पढ़ाई करता है, छोटा बहुत मंदबुद्धि है, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं रखता, कम इंटेलिजेंट है कंपेरिटिव टू हिज एल्डर ब्रदर। मां बाप परेशान थे, विटामिन खिलाया, वो खिलाया, बहुत कुछ कराया, बादाम खिलाया होगा, बात नहीं बनी। किसी तांत्रिक टोना टोटका करने वाले के चक्कर में फंसे, बंगाली बाबा, मुस्लिम बाबा, ऐसे नाम होता है, अखबारों में भी बड़े एडवर्टाइज आते हैं। तो उसने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, आपके बच्चे को भी, छोटे बच्चे को भी टैलेंटेड कर दूंगा। ये सच घटना है। तो क्या करना पड़ेगा कि मैं अपनी तंत्र साधना के द्वारा बड़े बच्चे का खून छोटे बेटे के अंदर डलवाऊंगा और मैं अपनी तंत्र साधना के द्वारा दोनों की बुद्धि बराबर हो जाएगी, बड़े बच्चे की कुछ बुद्धि इसके अंदर मैं ट्रांसफर कर दूंगा। देवियों सज्जनों ध्यान रखिए, दोनों कपल डॉक्टर थे, ये अंडरलाइनिंग पॉइंट है। लाखों की डील हुई, लाखों रुपए की। अब मेडिकल में ब्लड ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, मैचिंग करता है कि नहीं देखना पड़ेगा। तांत्रिक वहां जा नहीं सकता क्योंकि वो डॉक्टर थे, तो अपने घर में ही सारा स्ट्रेचर वगैरह बाकी सब अरेंजमेंट कर दिया। तांत्रिक ने पूजा पाठ किया, बड़े बेटे के खून को छोटे बेटे में चढ़ाया गया, मैच नहीं किया, रिएक्शन हुआ, दोनों बच्चे मर गए। पब्लिक को पता ना चले, अपने बैकयार्ड में दोनों को दफना दिया। पर किसी तरह बात सामने आई कि अब दो बच्चे हैं, रिश्तेदार, कहीं ना कहीं तो कुछ पता तो चलता है। पता चली, इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस इन्वेस्टिगेट किया, पकड़े गए, अखबारों में, टीवी में ये बात आई। देवियों सज्जनों, डॉक्टर कपिल एक अनहोनी को होनी करने के लिए एक अनपढ़ जादू टोना करने वाले आदमी के चक्कर में आकर दोनों बच्चों को खो बैठे। ये जादू टोना ऐसी करते हैं। आज भी भारत के हजारों गांवों में, शहरों में भी, खास करके महिलाओं को भूत घुसा है, डायन घुसी है कह करके ओझा बुलाते हैं, झाड़फूंक करते हैं, खूब मारपीट करते हैं, आग की गरम गरम आग उसमें लगा डालते हैं। और वो सब कौन होते हैं? वो मेंटली वो पेशेंट हैं जिनको किसी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, साइकेट्रिक की जरूरत है, जिनकी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। साइंस में इसकी प्रोविजन है, मेडिकल साइंस में ये सब क्योर हो सकते हैं। थोड़ा अननेचुरल बिहेव करने लगता है तो हम लोगते हैं कि उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया। फिर हम उसको इसी तरह ट्रिक करते हैं और पब्लिक में जो ओझा है, जो तंत्र गुण, जादू टोना करता है, उसको भी हम धनी बनाते हैं और समाज में कितने लोगों को परेशान करते हैं। तो हमने इतने दिनों से, तीन चार पांच संडे से, हम जो अलग अलग सुपरस्टिशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम देखेंगे उसका रिलीजन से क्या रिलेशनशिप है, इवन एजुकेशन से भी क्या रिलेशनशिप है। रिलीजियस प्रीचर्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल सुपरस्टिशन मॉन्गर्स। देवियों सज्जनों, आप चर्च जाओ, मस्जिद जाओ, आपके लोकल मंदिर जाओ, अलग अलग टाइप के चीजों दिखेंगे क्योंकि अलग अलग सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, पर ओवरऑल अंदर की बात एक ही है। क्या? शनि को खुश करो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। कन्फेशन करो, पाप तुम्हारा दूर हो जाएगा। ये अंगूठी पहनो, सोने की, हीरे की, पता नहीं कौन से पत्थरों की, तो तुम्हारे भाग्य ठीक हो जाएगा। शुभ मुहूर्त देखकर शादी करो, पति पत्नी सुखी रहेंगे। आज तक तो मुझे पता नहीं चला, ये सारे हमारे जो माँ बाप के एज के जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम शुभ मुहूर्त देख के ही ज्योतिषी से शादी किया है, और सब लड़ते रहते हैं। और सबके घर में पति पहले जाता है या पत्नी बाद में जाती है? दोनों में से तो किसी को पहले जाना ही पड़ेगा ना, मतलब या तो पति मरेगा पहले या पत्नी मरेगी। शुभ मुहूर्त देखकर अगर ये हालत है, ये बिना शुभ मुहूर्त देखकर के ये जो नए लड़के लड़कियां लव मैरिज करते हैं वो आपसे बेटर हैं, वो भी लड़ते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, वो भी ऐसे ही लड़ते हैं, पर कम से कम वो आपके तरह सुपरस्टिशियस नहीं है। एक्सेप्ट करते हैं कि लड़ाई इज पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। मोस्ट ऑफ रिलीजियस फेथ्स आर बेस्ड ऑन थाउजेंड ईयर्स ऑफ ओल्ड फेनोमेना स्टोरीज, एंड वी आर आस्किंग टू पुट आवर होल फेथ ऑन देम विदाउट क्वेश्चन और डाउट। हमने आपको उस दिन स्टोरी सुनाई थी, श्राद्ध की स्टोरी शुरू में। आज कंटेक्स्ट है तो दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं, जो पुराने आए थे उसको थोड़ा इग्नोर करें। पिताजी घर में अपने पिता के श्राद्ध करते थे, जैसे वर्षी पर करते हैं घर में, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, पूजा पाठ होता है, पिंडदान होता है, बहुत कुछ होता है। तो पंडित जी आते हैं, श्राद्ध करते थे तो घर में खाना बनता है, क्योंकि ब्राह्मण लोग आते थे, खाना खाते हैं, और वो पत्ते में वो पिंड रखते हैं, वो चावल का गोला बना करके, रोटी का गोला सब रखते हैं। तो उनका घर में एक बिल्ली थी, बिल्ली मुंह लगा देती थी तो उसको एक टोकरी में ढक देते थे। जनरली उसके घर में और कुछ होता नहीं था, कोई भी पूजा पाठ, पर पिताजी के श्राद्ध के लिए करना पड़ता था। वो व्यक्ति खुद एक दिन चला गया, मतलब उनका भी देहांत हो गया, समय बहुत पुरानी है, पंडित जी भी नए थे। अब बेटे का जिम्मेदारी है कि वो अपने पिता के श्राद्ध करे, पहला श्राद्ध है प्रथम वर्षी। पंडित जी नए मिले, पंडित जी को लिस्ट मांगी, पंडित जी ने लिस्ट पकड़ाई श्राद्ध की। बेटे ने पढ़ा, बोला पंडित जी गलती से आपने दो चीजें छोड़ दी है। क्या? बिल्ली और टोकरी तो आपने लिखी नहीं है। पंडित जी नए थे, मतलब नए नहीं, वो भी एक्सपर्ट थे, पर इनके घर के लिए नए थे, पुराने पंडित जी नहीं थे। पंडित जी बोले बिल्ली और टोकरी की क्या बात है, श्राद्ध में इसकी क्या जरूरत है? बोले कैसा पंडित हो, हमारे घर में इतने सालों से तो श्राद्ध होता आ रहा है कि भाई जब श्राद्ध हो तो बिल्ली को ढकते हैं टोकरी से, और आप तो क्या पंडित हो, आपको इतना भी नहीं आता है। यकीन मन ये हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, यहां बहुत अपने आप को मूर्ख साबित करना पड़ता है। पढ़े लिखे महिलाएं हमें भी मूर्ख साबित कर देते हैं, क्योंकि हमें ये टोकरी और बिल्ली वाली कभी कभी समझ में आती नहीं है। तो पंडित जी ने कहा ये तो मुझे पता नहीं। बोले कैसे पंडित हो? अब पंडितों को आजकल क्या फर्क पड़ता है, पैसा दो जो मर्जी करवा दो। बोले ठीक है मंगवा देना, क्योंकि उनकी घर की बिल्ली भी मर गई थी, टोकरी मंगाई गई, बिल्ली किराए पर लाई गई, और श्राद्ध हुआ, टोकरी से बिल्ली को ढकी गई, फिर श्राद्ध कर्म हुआ। स्वामी जी दयानंद इस पर कमेंट करते हैं स्टोरी को लिखकर कि बिल्ली को टोकरी से ढकना कोई बुरी बात नहीं थी जब उसके पापा करते थे। इट वॉज नॉट सुपरस्टिशन एट दैट टाइम व्हेन हिज फादर यूज टू डू इट। ये उसकी जरूरत थी। आज जो हो रहा है ये सुपरस्टिशन है, क्योंकि तुम्हारी बिल्ली मर चुकी है, टोकरी घर में है नहीं, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पिताजी क्यों टोकरी से बिल्ली ढकते थे। आज तुम इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पिता करते थे, तुम्हारे दादा करते थे, तुम्हारे परदादा कोई चीज को करते थे इसीलिए करते हो। तो वही चीज जो कल सही था आज वो गलत हो जाता है। हमारे रिलीजन में भी यही चीज ज्यादा काम करता है। कुछ चीजें हजार साल पहले किसी कारण से जरूरी था, कोई ज्योग्राफिकल रीजन था, कोई और कारण थे। कुछ लोग पूछ लेते हैं जी आप हवन करते हो आम की लकड़ी से नहीं करते हो तो कैसे करते हो, मतलब आम की लकड़ी से ही क्यों करे भाई, नहीं भारत में तो सब आम की लकड़ी से करते थे तो आपके आम की लकड़ी से नहीं करोगे पाप नहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा उनको पाइन की ट्री के बारे में पता नहीं था, और अमेरिका में आम की ट्री नहीं मिलती है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अमेरिका में कभी हवन करना नहीं है, जब भी जाओ इंडिया में करो आम की लकड़ी मंगा के, या तो पाइन ट्री की लकड़ी से करो। यह सुपरस्टिशन है, आम की लकड़ी में करना यह सुपरस्टिशन नहीं है। पर आम की लकड़ी से ही होती है बिना ना से समझे इस पर अड़े रहना यह सुपरस्टिशन है। क्यों आम की लकड़ी से होती थी उसके कारण है, उसके सैकड़ों कारण है, वो कारण यहां फिट नहीं बैठता तो यहां नहीं हो सकता। पर हमारा रिलीजन ऐसा नहीं है, हमारे प्रीचर्स, हमारे पंडित, हमारे फादर्स, हमारे मौलवी ऐसा नहीं बोलते। क्यों किसी को पर्दा करना जरूरी है? क्योंकि अरब में रेगिस्तान है, धूल उड़ता है, मर्द लोग भी बांधते हैं अपना डालते हैं, औरतें भी डालती हैं। मुसलमानों के इन्फ्लुएंस से हम आए, हमारे औरत ने डालना शुरू कर दिया मुंह पर। और भी कारण है, मुगल शासक रहे, जबरदस्ती उठा लेते थे स्त्रियों को, लड़कियों को छुपा के रखते थे। आज क्यों आप ढकोगे मुंह? मंदिर जाएंगे पर्दा डाल के जाएंगे, क्यों भाई? इसका कोई रीजन है सिवाय यही कि जहां से आपने सीखा, उन्होंने जहां से सीखा वो अरब के थे। इसके अलावा और क्या रीजन है कि आप सर पर कोई पट्टी डाल के मुंह में डालो? क्या रीजन है? आपने जहां से सीखा और इन्होंने जहां से सीखा वो अरब के थे, दैट्स इट। अगर कोई अरब डालता है वो सुपरस्टिशन नहीं है, पर जब आप डालते हो तो वो सुपरस्टिशन है, क्योंकि आपके पास क्या रीजन है इस चीज की? द होल्डिंग एंड क्लिंगिंग द ओल्ड अनप्रूवन मैटर विच इज पिक्युलर टू द पर्टिकुलर प्लेस टाइम और कम्युनिटी इज ऑल्सो सुपरस्टिशन। किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए वो सही था, किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो सही है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो सही हो सकता है। पर क्योंकि आपके एक छोटा उदाहरण देते हैं, आप कभी इस्कन मंदिर गए होंगे, वहां गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं, बड़े यूनिवर्सल भक्त वहां होते हैं। उनके वहां जो खाना बनता है, जो प्रसाद में वो चावल होता है, बंगाली चावल, बंगाली दाल, बंगाली सब्जी टाइप के प्रसाद चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उनके गुरु जी बंगाली थे, भक्ति वेदांत जी। मतलब अगर वहां पिज्जा चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? भगवान नाराज हो जाएंगे? मतलब वेजिटेरियन पिज्जा चढ़ाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? अगर तुम्हारे गुरु बंगाल के ना होकर के ब्रिटेन के होते तब तो पिज्जा चढ़ा लेते, बर्गर भी चढ़ा लेता। ध्यान दीजिएगा कितने अंदर हमारी कल्चर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर इसी को सुपरस्टिशन कहते हैं। किसी पर्टिकुलर जगह पर वो सही है, पर अगर आप उस चीज को सब जगह करोगे वो सही नहीं हो सकता। द आइडिया दैट सर्टन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट यू इज ए कॉमन मिसकंसेप्शन दैट वी कैन मैनिपुलेट गॉड। इसका मतलब क्या है? जब आप कहते हो आपको आपके सो कॉल्ड ज्योतिषी ने बताया हाथ देख के, माथा पढ़ के कि देखो भाई शनि नाराज है, तुम्हारे घर में कलह चल रहा है, 15 ब्राह्मणों को खिलाओ, ऐसा हवन करो, वहां सरसों का तेल चढ़ाओ या नारियल का दिया चढ़ाओ, करने से ठीक हो जाएगा। ये सब करने से आप क्या कर रहे हो? अगर ये सब भगवान कर रहा है तो दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट द गॉड। क्योंकि हम इंसान बड़े बेईमान होते हैं, डिसऑनेस्टी हमारे खून में होती है, किसी में ज्यादा किसी के कम, तो हम ईश्वर को भी डिसऑनेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। चलो केला खा लो, खुश हो जाओ। तुम्हारे हुंडी में पैसा डाला, हुंडी समझते हैं, मंदिर का जो डोनेशन बक्स है, डाला, अब खुश हो जाओ। रोज तुम्हारा नाम लेता हूं, जैसे नेताओं के नाम लेते हैं ना, आप बड़े अच्छे हैं, यू आर द सो ग्रेट, यू आर द ओनली लीडर हु कैन डू दिस, ओ माय गॉड, आई नेवर सीन दिस टाइप ऑफ लीडर। ये अमेरिका में थोड़ा फ्लैटरिंग ज्यादा होती है, ये जो अमेरिकन कल्चर जो है वो थोड़ा सुपरफिशियस और वो फ्लैटरिंग थोड़ा यहां ज्यादा है। खाना अच्छा ना अच्छा लगे ना लगे, अमेजिंग, इट्स टू, ओ माई गॉड, ब्लेस, टू मच, ये थोड़ा मुश्किल होता है। आज इनको फ्लैटरिंग ज्यादा पता नहीं, वो फंस जाते हैं यहां, फिर लोग कहते हैं ये बैड मैनर है। चलिए वो तो अलग बात है। तो मतलब हम कोशिश करते हैं ईश्वर को फ्लैटरिंग करने की और उसको मैनिपुलेट करने की। अगर आप आस्तिक हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि ईश्वर ऐसा कुछ करेगा? आप पाप करते जा रहे हो और पूजा करके सोचते हो पाप को से छुटकारा मिल जाए, इसका मतलब आप ईश्वर को सचमुच नहीं मानते हो। आप तो किसी मैनिपुलेटर पर्सन को चाहिए जो आपके उटपटांग हरकतों को ठीक कर दे। इससे बेटर तो नास्तिक है जो मानता ईश्वर नहीं है, कम से कम उसको बदनाम तो नहीं करता, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं करता। आप तो धर्म के नाम पर, ईश्वर को मानने के नाम पर, यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट इवन गॉड। ऐसा होता नहीं है, ये एक मिसपरसेप्शन है। अगर लाइफ में प्रेयर करने से बीमारी ठीक होती तो सबके ठीक हो जाते, मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती, डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल एक इंडस्ट्री चलती है, प्रेयर हीलिंग इंडस्ट्री, आपके रिलीजन में नहीं है, आपके साथियों के रिलीजनों में है। आपको पता है उनके कॉल सेंटर्स होते हैं, हजारों लड़के लड़कियां वहां काम करते हैं। किस बात की? आप फोन करो, जी मैं बीमार हूं, मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है, नौकरी में ये प्रॉब्लम है, क्या चाहिए? प्रेयर करना है। ठीक है, कितने महीनों का? जी 2 महीने का, 4 महीने का। तो क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, इतना आपके पैसा कट जाएगा, तो चर्चों में उनके लोग प्रेयर करेंगे और आपका ठीक हो जाएंगे। प्रेयर हीलिंग चलती है, ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की बिजनेस है। किसको प्रेयर कर रहे हो ठीक करने के लिए? ईश्वर को। मतलब प्रेयर के द्वारा अगर ये पार्ट ऑफ रूल ऑफ नेचर है, यू वांट टू ट्राई टू मैनिपुलेट इट, इससे कोई ठीक नहीं होता। अगर कोई ठीक होता है तो डॉक्टर के कारण होता है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के कारण ठीक होता है। बट ऑल क्रेडिट गो टू दैट मैनिपुलेटर, प्रेइंग हीलर। एजुकेशन, आप कहेंगे हम एजुकेटेड है, हम सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक फैशन है, ये स्टेटमेंट। क्या? पढ़े लिखे लोग, मैं पढ़ा लिखा हूं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा खास व्यक्ति हमेशा बोलेगा आई डोंट बिलीव इन सुपरस्टिशियन, ये एक फैशन है। हर आदमी को बैठा के आधा घंटा निचोड़ के पूछो, दर्जनों सुपरस्टिशियन उसके पेट में से निकलेगा। एजुकेशन विल नॉट हेल्प मच टू इराडिकेट सुपरस्टिशियन, द लेटर विल मेरिली शिफ्ट इट्स ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट लॉसिंग अप्रिशिएबली इट्स होल्ड ओवर द ह्यूमन माइंड। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हुआ, लोग पढ़े लिखे हुए, कल्चर और रिलीजन और ट्रेडिशन के नाम पर उन सब सुपरस्टिशियन को अडॉप्ट किया पढ़े लिखे लोगों ने। और डेंजरियस पार्ट क्या हुआ, जब पढ़ा लिखा लोग उसको अपनाता है, वो इंटेलेक्चुअली इज ट्राइंग टू प्रूफ इट लॉजिकली इट्स करेक्ट, क्योंकि उसके पास माइंड है, इंटेलेक्ट है, वो उसको एक इंटेलेक्चुअल कवर देने की कोशिश करता है और जिससे कि आम लोग आसानी से मान जाते हैं। हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर ये गलत है तो इतने सारे लोग क्यों फॉलो करते हैं, इतने बड़े बड़े लोग क्यों फॉलो करते हैं, ये डेंजर क्यों पैदा हुआ है, लोगों को ये लॉजिक देने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग मानते हैं। तो एजुकेशन ज्यादा हेल्प नहीं करता। अब मेरा खुद का घर घर में घूमने का एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़े लिखे लोग अपनी सारी पढ़ाई को ताला लगा के रख देते हैं जब रिलीजियस चीजें आती है। देर आर मेनी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लीडर्स, इवन साइंटिस्ट हु आर लर्नड पीपुल एंड सफिशियंटली एनलाइटेंड पर्सन्स, येट दे बिलीव इन ऑल टाइप ऑफ सुपरस्टिशियंस। नो वन इज, कोई उनको फोर्स तो नहीं करता कि आप ये फॉलो करो, आप पढ़े लिखे हो, अपनी सारी आर्गुमेंट की कैपेसिटी आप डीलिंग में लगा देते हो, ऑफिस में लगा देते हो, घर खरीदते समय लगाते हो, पढ़ाई करते समय लगाते हो, आर्गुमेंट करते समय लगाते हो, रिलीजन में क्यों नहीं लगा सकते हो? किसने रोक रखा है आपको? ये जो उनका अनटेनेबल एटीट्यूड है, कॉमन पीपल उसे कंफ्यूज होता है, अल्टीमेटली फॉलो देम। द आर कॉन्ट्राडिक्शन इज इनकॉन्सिस्टेंट विद देयर एनलाइटनमेंट एंड एज सच दे कैन बी कॉल्ड सुपरस्टिशियंस। एक दो चीजें और आपको बताएं, इवन जो साइंटिस्ट होते हैं दे आर ऑल्सो प्रोन टू हैविंग देयर अनटेनेबल बिलीफ्स डिस्पाइट देयर इमेंस इन देयर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने फील्ड में कितने भी महान हो इसमें पढ़ते हैं। आप इनको ऐसा कह सकते हैं कि द क्वेश्चन रियली अराइजेस हाउ ए साइंटिस्ट कैन बी सुपरस्टिशियस, बिकॉज सुपरस्टिशियन एंड साइंस शुड इंडीड बी एंटोनिम्स, दो अलग अलग है। टू अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ सुपरस्टिशियस साइंटिस्ट इट इज नेसेसरी टू पॉन्डर द वर्ड साइंटिस्ट फर्स्ट, तभी आपको पता चलेगा एक फेक साइंटिस्ट और एक रियल साइंटिस्ट में क्या अंतर होता है, यह आपको समझने की जरूरत है। इन मोस्ट केसेस द वर्ड इज यूज मेरेली एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन, द बैंड ऑफ पीपुल यूजली ब्रांडेड एज साइंटिस्ट आर मोस्टली दोज हु जस्ट यूज साइंस टू अर्न मनी एंड इन देयर प्रोफेशनल वर्क। The knowledge acquired by others through the due process of science, the use of the term scientist in their case is not quite appropriate. They are really science scientific workers. इसलिए कोई physics का professor है, electronic का engineer है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो पढ़ाई चीजों को लाइफ में यूज करना ना सीखे वो सिर्फ साइंस का प्रोफेशनल है। इसीलिए और ये जो ड्यूअल सिचुएशन है माइंड का कि मैं अपनी आर्गुमेंटेटिव पावर को, लॉजिकल पावर को, रीजनिंग वाला पावर को सिर्फ प्रोफेशन में यूज करता हूं, लाइफ में आते समय ताला लगा देता हूं, ये जो ड्यूअल नेचर जनरली एजुकेटेड और साइंटिस्ट लोगों में ज्यादा दिखा जाता है। इसलिए कोई अपने आप को साइंटिस्ट बोले उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, उतना मानो जितना उसकी फील्ड की बातें हैं। उसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है बाकी किसी चीज में बोलने का। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड इन 2-3 मिनट्स। Effect of superstitions. It's a sweet poison. Why sweet? Because it tastes so agreeable. अच्छा लगता है, मजा आता है। बीमार पड़े हो, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी ने बोला कोई बात नहीं, शनि मंदिर में सरसों का तेल डालो, क्या फर्क पड़ता है, $10-20 और खर्च हो जाएगा, पंडित जी को $100 और दे देंगे। Agreeable है, sweet है, मजा आता है। पर यह poison क्यों? Because it kills the ardent desire of the man to know. ये व्यक्ति की सोचने की क्षमता पर ताला लगाता है। साइंटिफिक फैकल्टी जो आपके माइंड में है उसको यूजलेस बना देता है। जहां आपकी क्योर हो सकते वहां आप ट्राई नहीं करते हो। इरेशनल बिहेवियर बढ़ता है व्यक्ति के अंदर और मनी, हेल्थ, पीस, बहुत कुछ उसको हराना पड़ता है, कभी कभी लाइफ भी। जैसे मैंने वो डॉक्टर कपल का एग्जाम्पल दिया, ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ आवर माइंड हैज डन इमेंस हार्म टू द वर्ल्ड एंड इम्पेडेड ह्यूमन प्रोग्रेस। द इम्प्लांट एन आइडियोलॉजी ऑफ स्लेविश, फिर व्यक्ति स्लेव बनता जाता है उस पर्टिकुलर चीजों के। वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जगह वो उस सो कॉल्ड रिचुअल में फंसता जाता है, जादू टोना इधर उधर की बातों में फंसता जाता है। एक पापी आदमी को अगर आप बोलते हो जो लोगों को लूटता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, आप उसको बोलते हो गंगा में नहाओगे, गीता का एक अध्याय पढ़ोगे, ये करोगे, तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, चर्च में जाकर कन्फेस करोगे, तुम्हारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, आप उस व्यक्ति को मोटिवेट करते हो कि बुरा काम करते रहो और चीटिंग करो और डिसऑनेस्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ता सहज है, गंगा में डुबकी लगाओ, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, कोई स्क्रिप्चर पढ़ लो, कुछ और कर लो, चर्च में कन्फेस कर दो, सारे पाप तुम्हारे मुक्त हो जाएंगे। सो वी आर अनोइंगली क्रिएटिंग ए डिसऑनेस्ट करप्ट सोसाइटी थ्रू दिस सुपरस्टिशियंस। एंड व्यक्ति धीरे धीरे अपने सुपरस्टिशियन में स्लेव होता जाता है। अब इवन वो चाहता भी है कि मैं ठीक बनूं, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ही इज राइट, वो ठीक कर रहा है। दुकान में बेईमानी कर रहा है, मंदिर में दान दे रहा है, और उसने पढ़ रखा है, सुन रखा है कि मंदिर में दान देने से पाप पुण्य बन जाते हैं, फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। कोई भी बेईमान को आप ईमानदार नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो मानता है कि मैं अपने ईमान ब्लैक को व्हाइट करने का प्रोसेस मुझे पता है। ये सुपरस्टिशियंस आपको नुकसान करता है, पूरी लाइफ बर्बाद करता है व्यक्ति का, और उसके कितने जन्मों के लिए वो नरक में ढकेलता है उसके अनजाने में। वो पंडित कराए, कोई भी कराए, पर व्यक्ति नुकसान तो आप व्यक्ति को ही भोगना पड़ता है। द स्टिप सेल्फ रिलायंस एंड डिटर पीपुल फ्रॉम लिविंग प्रोडक्टिवली एंड क्रिएटिवली। जैसे यहां ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली वेस्टर्न है कि डेमोन्स कॉजिंग इलनेस, है ना, डेविल्स के कारण आपको बीमार होता है। इफ दैट टाइप ऑफ बिलीव यू हैव, इट प्रिवेंट्स पीपुल फ्रॉम सीकिंग रियल मेडिसिन एंड दैट माइट एक्चुअली हेल्प देम। कभी नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, अमेरिका में, थोड़ा गूगल में सर्च करिए, यहां के जो कल्ट ट्रेडिशन रहा है और आज भी है, बहुत सारे गुरु कल्ट यहां भी होते हैं, कैसे हजारों लाखों लोग बर्बाद होते हैं, मरते हैं। इवन अमेरिका में पढ़े लिखे लोग होकर भी कैसे कल्ट के कल्चर में फंस के बर्बाद होते हैं। द स्ट्रांग बिलीफ इन मिरेकुलस क्योर्स लाइक साइकिक हीलर्स, फेथ हीलर्स, विच डॉक्टर्स, ब्लैक मैजिक, रियन पीपुल्स हेल्थ बे एंड क्योर। इवन द साइंस एंड मॉडर्न मेडिसिन हैज गॉन इन टू डेप अबाउट प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस एंड क्योर ऑफ मोस्ट ऑफ दिस डिजीजेस। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, व्यक्ति नास्तिक बनता है। देखिए हिंदुओं की क्या दुर्दशा है, बहुत मुश्किल से आपको कोई हिंदू मिलेगा जो ईश्वर को मानता है। सब ईश्वर के नाम पर किसी बाबा के चरण में पड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर मैथिकल, कोई मैथोलॉजिकल कैरेक्टर को भगवान मान के पूज रहा है, किसी बाबा को भगवान मान के पूज रहा है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो ईश्वर को मानते हुए मिलेंगे। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जिस रास्ते पर मॉडर्न हिंदू जा रहा है, ऐसा ना हो कि हम अननोइंगली एक नास्तिक बनते जा रहे हैं, ईश्वर के अलावा बाकी सब मानने को तैयार बैठे हैं, आम लोगों को ईश्वर से हटाकर बाकी चीजों में मन लगा करने के लिए कह रहे हैं। इट हैज सर्व्ड एज ए ग्रेट टेरराइजर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड पुट पीपुल एट द मर्सी ऑफ चीट्स। जब आप भगवान से मन को हटाओ, ईश्वर को हटा, इंसान को हटा रहे हो, किसी शनिदेव पर लगा रहे हो, किसी और पर लगा रहे हो, किसी और पर लगा रहे हो, तो लोगों को तो नास्तिक बना ही रहे हो। और कुछ चीट्स को प्रमोट कर रहे हो. इट हैज ब्लाइटेड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स एंड एनकरेज इग्नोरेंस फ्रॉड एंड क्विकरी. मैंने शुरू के दिन में बताया था सुपरस्टिशन बढ़ता है फ्रॉड के साथ. फ्रॉड और सुपरस्टिशन दोनों एक दूसरे के कंट्रोल करते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे हाउ टू इरेडिकेट. एक दो मिनट और लूंगा आज थोड़ा, क्योंकि आज कंक्लूड करना है. क्या करे तो आप व्यक्ति सुपरस्टिशन से दूर रहे. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. अगर आप में ये नहीं हो पाया है कम से कम बच्चों में जरूर डालिएगा. द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. भारत में पढ़ने वाले बच्चों में नहीं आ सकता क्योंकि वहां का सोसाइटी अभी भी वैसा ही है. मां बाप को सवाल नहीं कर सकते हो, पंडितों को बाबा को सवाल नहीं कर सकते हो, स्कूल में टीचर को सवाल नहीं कर सकते हो क्योंकि डिसरेस्पेक्ट हो जाता. पता नहीं सवाल पूछने से क्यों कोई डिसरेस्पेक्ट समझा, मुझे समझ में नहीं आता है. सिवाय कोई मूर्ख या कोई नहीं जानता या कोई चीटर है. बाकी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर कोई सवाल पूछता है. पर हमारे इंडियन ट्रेडिशन में इन द नेम ऑफ कल्चर हम बच्चों को डिमोटिवेट करते हैं. सवाल मत पूछो. आप लोगों ने नहीं पूछा होगा पर अपने बच्चों को जरूर प्रमोट करिए टू आस्क क्वेश्चन. कितना बड़ा से बड़ा बाबा हो तो दे हैव टू करेज टू आस्क देम क्वेश्चंस. जैसे आप पॉलिटिकल लीडर से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने की हिम्मत रखिएगा और क्वेश्चन पूछिए जरूर. पीपुल शुड बी मोटिवेटेड टू थिंक रैशनली एंड रिव्यू ऑल देयर वैल्यूज. कोई भी वैल्यूज कल्चर या ट्रेडिशन के नाम पर बच्चों को न सिखाएं जब तक आप उसको लॉजिकली न समझा पाएं, रैशनली न समझा पाएं. अगर आपको लगता है ये रैशनली करेक्ट नहीं है, इग्नोर इट. दे शुड बी एनकरेज टू डिस्कार्ड द यूजलेस एंड सेंसलेस वैल्यूज एंड एट द सेम टाइम अबाइड बाय द मीनिंगफुल वैल्यूज. मेकिंग देम कॉन्शियस ऑफ द नीड टू क्रिटिसाइज रिलीजियन. ये हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए. और आपको पता हो ना हो, हिंदू धर्म की एक सुंदर ट्रेडिशन रहा लाखों सालों से. कोई भी पुराना स्क्रिप्चर उठा के देखिए, हर स्क्रिप्चर गुरु और शिष्य के संवाद, डायलॉग और डिबेट से हुआ है. मतलब तुम्हारे जो एंसेस्टर से दे आर बेटर देन यू, वो आर्गुमेंट करते थे किसी चीज पर कंक्लूजन में पहुंचने के लिए. इवन अपने गुरु से लड़ते थे, गुरु से अपोजिट थ्योरी रखते थे. और हम सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेटेड पीपुल हम अपने एंसेस्टर से भी बदतर होते जा रहे क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछने में समस्या आती है. मन में क्वेश्चन आता ही नहीं है. इंस्टिलिंग टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियंस अदर देन देयर ओन एंड एंजेंडरिंग साइंटिफिक आउटलुक एंड रैशनलिज्म इन देम. अब मैं कंक्लूड करता हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है. और एक चीज जो ये भी बताना जरूरी, एजुकेटिंग वोमेन. क्योंकि जनरली हम देखते हैं जो सुपरस्टिशन और रिलीजियस की पार्ट है उसका जो विक्टिम है वो वोमेन होता है और उसका प्रोमोटर भी वोमेन ज्यादा होता है. वो एक्सेप्ट करते हैं, सारे बुरे लोगों को यही भगवान मानते हैं, यही पूजा पाठ में ज्यादा जाते हैं. उपवास करना अच्छी चीज है, पेट साफ होता है, व्यक्ति हेल्दी रहता है. आपको पता है भारत में करोड़ों महिलाएं माइग्रेन से लेकर हजारों बीमारियों में पड़े मिलते हैं. क्यों मिलते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा धार्मिक चीजें वही करते हैं, पुरुष कुछ नहीं करता. मतलब पति ठीक रहेगा उसके लिए पत्नी को उपवास करना पड़ेगा. वो कोई पति करता है भाई, पत्नी ज्यादा देर तक जिए तो मैं उपवास करूं? क्यों? वो समझदार हैं, दे आर स्मार्टर देन यू, दे डोंट डू. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? करोड़ों महिलाएं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हजारों बीमारियों से पीड़ित हैं बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस सुपरस्टिशियंस. आप महीने में एक बार उपवास करते हैं, भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना करिए, जप करिए, खाना छोड़ लीजिए, पानी पिए, गुड. 15 दिन में एक बार करिए, बहुत अच्छा. हफ्ते में एक बार करिए, बहुत अच्छा. पहले हमारे प्राचीन शास्त्रों में था एकादशी के दिन, अष्टमी के दिन. पर अगर मैं आज बीमार हूं या और कोई प्रॉब्लम है, आज एकादशी आ गई, न करिए. वो सुपरस्टिशन कहां आता है? क्योंकि एकादशी को मैं करता था, आज भी एकादशी है, इवन मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूं तो भी मैं करूंगा. ये सुपरस्टिशन है। कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी खास करके हिंदुओं में कोई खराब नहीं है, पर जब आप उसको विदाउट अंडरस्टैंडिंग ब्लाइंडली फॉलो करते हो वो फिर मुश्किल पैदा करता है। इसीलिए महिलाओं को ज्यादा अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उनको यह समझने की जरूरत है कस्टम ट्रेडिशन और कल्चर और रिलीजन ये चार अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्स करना नहीं चाहिए। लास्ट में आप सबके लिए, मैन शुड थिंक, ही शुड यूज ऑल हिज सेंसेस, ही शुड एग्जामिन, ही शुड रीजन। द मैन हु कैनॉट थिंक इज लेस देन ए मैन। द मैन हु विल नॉट थिंक इज ए ट्रेटर टू हिमसेल्फ। इफ यू डोंट थिंक एंड यू हैव कमिटेड दैट यू आर नॉट गोइंग टू थिंक इन फ्यूचर, यू आर नॉट ओनली ए फुलिश, you are the traitor of yourself. The man who fears to think is superstition slave. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।